निशा ने यही सोचा था कि उसके भड़काने के बाद अभिमान आशिका से झगड़ा करेगा या उसे छोड़ने के बारे में सोचेगा, लेकिन उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उसे अभिमान के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। निशा ने कभी उसे इस तरह हंसकर बात करते हुए नहीं देखा था और इस वक्त ये सब सुनकर अंदर ही अंदर उसका खून जल रहा था। निशा गुस्से में तेज सांसें ले रही थी। वो जल्दी से तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गई थी। निशा अपने बाजुओं को सहला रही थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे कल की आई उस लड़की पर इतना यकीन है कि उसके आगे कुछ देखना नहीं चाहता। पहले मेरा अभिमान ऐसा नहीं था, वो उसके आने के बाद बदल गया है। नहीं, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा, वरना आज तो अभिमान ने मुझसे बात करना छोड़ा है, कल को वो मेरा चेहरा तक देखना छोड़ देगा। मेरा उसके अलावा कोई नहीं है, वो मेरा इकलौता सहारा मुझसे छीन नहीं सकती है, निशा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। निशा ने बेड साइड पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और बिना सोचे समझे सीधा तृप्ति को फोन घुमा दिया था। वो तृप्ति जिससे वो नफरत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से इतने सालों तक अभिमान पर ये इल्ज़ाम लगा रहा कि उसकी वजह से आशिका की जान चली गई। देर रात को निशा का कॉल देखकर तृप्ति भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि निशा ने क्यों कॉल किया होगा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। तृप्ति ने निशा का कॉल रिसीव किया और मायूस आवाज में बोली, अब क्या किया है उस लड़की ने जिसकी वजह से आप देर रात तक मुझे कॉल करने पर मजबूर हो गई हैं मिसेज राजवंश? मैं उसे समझ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती कीजिए और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए। मैं उसकी शादी को नहीं मानती हूँ और वो मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकती है, निशा ने दांत पीसते हुए कहा। मैं भी आपकी तरह उन दोनों की शादी को नहीं मानती हूँ। वो लड़की बस आपके बेटे के पैसों के पीछे है, वो मेरी नहीं सुन रही है, तृप्ति ने जवाब दिया। वो ऐसे जता रही थी मानो इस वक्त कितना लाचार महसूस कर रही हो। अगर वो पैसों के चक्कर में मेरे अभिमान के साथ है तो मैं उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप उससे बात कीजिए और पूछिए उसे कितने पैसे चाहिए, निशा ने जल्दी से कहा, मानो उसकी मुसीबत कुछ पैसे देकर दूर हो जाएगी। निशा की बेवकूफ़ी और नादान बातें सुनकर तृप्ति ने आंखें घुमाई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो बेवकूफ नहीं है मिसेज राजवंश, आप उसे कुछ पैसे देंगी जबकि अभिमान राजवंश की पत्नी बनने में वो ज्यादा अमीर हो सकती है। एआर एम्पायर का मालिक है आपका बेटा, और क्या लगता है कि उसे छोड़कर वो कुछ पैसे लेना सिलेक्ट करेगी? सच में वो लड़की बहुत ढीठ है, निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब भी आशिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता था, उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कलेजे पर सांप लौट रहे हों। कुछ पल रुककर निशा बोली, आपने कहा था कि आपके पास प्लान है और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, बस कुछ भी करके उसे मेरे बेटे से दूर कर दीजिए। वो थोड़े दिन रोएगा, उसे ढूंढेगा, लेकिन बाद में खुद ब खुद समझ जाएगा। और हाँ, उसे अभिमान से इस तरह दूर कीजिए कि वो उससे नफरत करने लगे। जी, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज से दो दिन बाद आप आशिका को अभिमान के साथ मत जाने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो उसे घर पर ही रोक दीजिएगा। मुझे बस दो दिन दीजिए मिसेज राजवंश, उसके बाद आपकी मुसीबत में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, तृप्ति बोली। आकाश ने उसे दो दिन का समय लिया था और इन दो दिनों में उसे कुछ भी करके अभिमान और आशिका को अलग करके आशिका को अपने पास आने पर मजबूर करना था। हालांकि तृप्ति ने अपनी तरफ से प्लान बना रखा था, पर साथ ही अगर उसका प्लान फेल हो जाता तो निशा उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। तृप्ति ने निशा को तुरंत मना भी लिया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसके बाद उसे मुझ पर यकीन नहीं है। फिर भी अगर आप दो दिन बाद उसे हमेशा के लिए अभिमान से दूर ले जाएंगी तो मैं तैयार हूँ, निशा ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। निशा से बात करने के बाद तृप्ति जोर से हंसी। वो इस वक्त अपना सामान पैक कर रही थी। दो दिनों बाद सिर्फ आशिका ही नहीं, वे लोग भी हमेशा के लिए वहां से गायब होने वाले थे। मैंने पहली माँ देखी है जो अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। खैर, मेरा ही फायदा है। तुम्हारे पास सिर्फ दो दिन का वक्त है आशिका, तुम्हें अभिमान के साथ जितना रहना है रह लो, उसके बाद तुम उम्र भर उसकी शक्ल तक नहीं देख पाओगी, तृप्ति ने सिर झटक कर कहा। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आशुतोष अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। जब से अभिमन्यु ने उसे आशिका के मिलने की बात कही थी और ब्लड सैंपल लिया था, तब से वो काफी बेचैन महसूस कर रहा था। आशुतोष पहले भी आशिका को बहुत मिस करता था, लेकिन अब तो उसका मन कर रहा था कि वो उसके पास पहुंच जाए। लेकिन अभिमन्यु उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बता रहा था जिस पर उसे आशिका होने का शक था। आशुतोष दिन में काफी सारे मैसेज अभिमन्यु को छोड़ता था, लेकिन अभिमन्यु ने उनका ठीक से जवाब भी नहीं दिया था। अभिमन्यु के मैसेज इग्नोर करने पर आशुतोष ने उन्हें कॉल कर लिया था। अभिमन्यु जानता था कि आशुतोष क्या कहना चाहते हैं। उसने गहरी सांस लेकर झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपके जल्दी करने से रिजल्ट जल्दी नहीं आ जाएंगे। शुक्र मनाइए कि मुझे उसका ब्लड सैंपल मिल गया है। आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। आपके लिए कहना आसान है मिस्टर राजवंश, लेकिन जो इंतजार करता है उससे पूछिए। मैं रिपोर्ट आने तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब तक आप मुझे उस लड़की तक लेकर जाइए। मैं उसे देखते ही पहचान जाऊंगा कि वो मेरी आशिका है या नहीं। क्या वो दिखने में बिल्कुल यज्ञ जैसी लगती है? उसे हमारे बारे में कुछ याद है? आशुतोष ने भावुक स्वर में कहा। उनकी आवाज और बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आशिका के लिए किस हद तक तड़प रहे हैं। ऐसे में अभिमन्यु उनसे रूडली बात नहीं करना चाहता था। उसने शांत लहजे में कहा, हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि आप उसका चेहरा देखते ही पहचान जाओगे कि वो आपकी बेटी है या नहीं। बस ये ब्लड सैंपल्स ही एकमात्र प्रूफ बन सकते हैं। अब तो आप मुझे और भी तड़पा रहे हैं मिस्टर राजवंश। कम से कम उसकी फोटो भेज दीजिए, या ऐसा कीजिए कि एक बार उससे कॉल पर बात करवा दीजिए, आशुतोष ने जवाब में कहा। मैं नहीं करवा सकता, और ना ही वो करना चाहती है। मुझे आपको इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि हम दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। प्लीज, इस तरह मैसेज या कॉल करने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे, अभिमन्यु ने हल्के सख्त शब्दों में कहा और इस बार सीधा उनका कॉल कट कर दिया था। आशुतोष की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सिर हिलाकर कहा, बस दो दिन की ही बात है, दो दिन और इंतजार कर लूंगा। काजल को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। और यज्ञ, आशिका के आने के बाद यज्ञ को हमेशा के लिए वापस घर ले आऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। और आशी, अचानक आशी का जिक्र होते ही आशुतोष के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे और वो बोलते हुए रुक गए थे। कहीं आशिका को बुरा तो नहीं लगेगा कि हमने उसके नाम और पहचान किसी और लड़की को दे दी? शायद यज्ञ ठीक कह रहा था, हमें विहा को आशिका का नाम नहीं देना चाहिए था, आशुतोष ने धीमी आवाज में बड़बड़ाकर कहा। अगर आशी ये सब सुन लेती तो वो गुस्से से पागल हो उठती। आज पहली बार आशुतोष के दिमाग में अजीब चीजें घूम रही थी और उन्होंने आशी को विहा कहकर बुलाया था। वो हमेशा यज्ञ को डांटा करते थे कि उसने आशी को अपनी बहन की जगह नहीं दी है, और आज उन्हें वही यज्ञ सही हक रहा था।
अगली सुबह आशिका और अभिमान एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे और उनके कपड़े चारों तरफ फ्लोर पर बिखरे हुए थे। अभिमान चाहे आशिका को कितनी भी समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन आशिका की जिद के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। आशिका के फोन का अलार्म बार बार बज रहा था, जिसे अभिमान बंद कर रहा था। उन दोनों की नींद कब की टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों आंख बंद करके लेटे हुए थे। आज संडे नहीं है मैडम, और तुम्हारा उठने का इरादा क्यों नहीं लग रहा है? अभिमान ने बंद आंखों से कहा। क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी देर और ऐसे ही लेटे रहना चाहती हूँ, आशिका ने जवाब दिया। ठीक है, फिर पूरे दिन सोई रहो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो कॉल कर देना, मैं किसी को तुम्हें ऑफिस से लेने के लिए भेज दूंगा, अभिमान ने जवाब दिया और उठने को हुआ। तभी आशिका उससे दूर खिसक गई थी। उसे यही लगा था कि आशिका उसे जाने से रोकेगी, लेकिन वो आंखें बंद करके आराम से सोई हुई थी। अभिमान ने सिर हिलाया और फिर वहां से बाथरूम में चला गया था। उसके जाने के बाद आशिका ने मन ही मन कहा, मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, और क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे ही लेटे नहीं रह सकते? अगर मुझे हर बात कहनी नहीं आती तो तुम्हें भी बिना कहे कहाँ कुछ समझ आता है अभिमान राजवंश? आशिका मुंह बनाते हुए खड़ी हो गई थी। उसने अपने लिए कपड़े निकाले और अभिमान के कमरे के दूसरी तरफ बने ऑफिस एरिया के बाथरूम में चली गई थी। वे दोनों एक साथ ही तैयार होकर बाहर निकले थे। किसी को यहाँ देर तक सोना था, अब तैयार क्यों हुई हो? अभिमान ने उसे देखते ही कहा। क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना यहाँ अकेले नहीं रहना है, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, और बाकी की फैमिली तो ऐसे लगती है जैसे इस घर में रहती ही नहीं है, अजीब फैमिली है, आशिका ने जवाब दिया। उसका मुंह बना हुआ था। हाँ, फैमिली के साथ रहने के बारे में कंप्लेंट कौन कर रहा है? वो जो हमेशा अकेली रही है और जिसे अभी अकेला रहना होता है, अभिमान ने तंज भरे लहजे में कहा। अभिमान और आशिका बात कर रहे थे। इस बीच उनका ब्रेकफास्ट आ गया था। अभिमान का पूरा कमरा किसी एक छोटे घर की तरह था, जहां उसके रूम के अंदर ही ऑफिस एरिया और बालकनी में डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था। साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद अभिमान और आशिका ऑफिस जाने के लिए निकल गए। आशिका को भले ही राजवंश फैमिली के लोगों से मतलब ना हो, लेकिन वो अपने आसपास की हर छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करती थी। जब भी वे कमरे से बाहर निकलते तो निशा एक बार अभिमान के पास ज़रूर आती थी, लेकिन आज वो भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है इस बार तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज़ हो गई हैं, क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया था, आशिका ने धीमी मायूस आवाज़ में कहा। वो हमेशा से बहुत जिद्दी रही हैं। उन्हें कभी अपने भले की बात समझ नहीं आती है। खैर, उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली और उनके चक्कर में मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फिर चाहे कोई हमारे रिश्ते को मंजूरी दे या ना दे, अभिमान ने जवाब दिया और उसने आशिका के हाथ को कसकर थाम लिया था। उन दोनों की शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी उनके रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। आशिका के लिए इतना काफी था कि कम से कम अभिमान उसका साथ दे रहा है। अभिमान और आशिका गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ तृप्ति ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी और इस वक्त वो आकाश के साथ कॉल पर जुड़ी हुई थी। परसों सुबह, तुम्हें परसों सुबह आशिका को लेकर आना होगा। मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा। वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहां मेरे आदमी और मैं अपने प्राइवेट जेट के साथ आने वाला हूँ। मैं आशिका को वहां से ले जाऊंगा। तुम्हारे और सेलिना के लिए मैंने टिकट बुक कर ली है। तुम दोनों यहां से सीधा पहले अपने पति के पास एले जाने वाली हो और फिर तुम तीनों के लिए मैंने स्विट्जरलैंड में रहने का इंतजाम किया है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और आशिका तक भी कोई नहीं पहुँच पाएगा, आकाश ने कॉल पर कहा। अपनी तरफ से वो पूरी तैयारी कर चुका था। तृप्ति ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। इस बीच उसने आशी को भी मैसेज करके गुड न्यूज़ दे दी थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत चुके थे। वो समय भी पास आ गया था जब कल की सुबह तृप्ति को आशिका को लेकर मिस्टर स्काई की बताई हुई लोकेशन पर जाना था। वहीं इस वक्त अभिमन्यु देर रात को अपने केबिन में पृथ्वी के साथ था। उसके सामने कुछ पेपर्स रखे हुए थे और वो डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट था। रिपोर्ट पॉजिटिव है सर, सुबह ही रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट देखने के बाद भी सिंघानिया फैमिली के लिए यकीन कर पाना मुश्किल साबित होने वाला है, तो मैंने बाकी सबूत भी जुटा लिए हैं, पृथ्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। अभिमन्यु ने पृथ्वी को सिर्फ डीएनए सैंपल लाने के लिए ही कहा था। उसने नहीं सोचा था कि पृथ्वी आगे का काम भी खुद बखुद कर देगा। ठीक है, मैं मिस्टर सिंघानिया को बता देता हूँ और हमें आशिका के साथ उनकी एक मीटिंग अरेंज करनी होगी। आशिका के लिए आसान नहीं रहने वाला और ना ही मिस्टर सिंघानिया के लिए, तो तुम्हें आगे की तैयारी भी देखनी होगी। फिलहाल हमारे मुंबई जाने के लिए टिकट बुक कर लो, हमें कल सुबह ही मुंबई जाकर उनसे बात करनी होगी, अभिमन्यु बोला। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी। हर कोई अपने अपने प्लान के साथ तैयार था और उन्हें सुबह एक दूसरे से मिलने का इंतजार था।